आज की इस गहरी पड़ताल में आपका स्वागत है। हमारे सामने आज जो स्रोत हैं वो एक बहुत बड़े सवाल से शुरू होते हैं।
सवाल ये कि एक बेहतर समाज कैसे बनाया जाए।
बिल्कुल, और दिलचस्प बात यह है कि इसका जवाब किसी, आप कह सकते हैं, किसी बड़ी नीति या आर्थिक योजना में नहीं खोजा गया है,
बल्कि हमारे घर में है।
हाँ बिल्कुल, हमारे घर की रसोई में। ये बात मुझे बहुत अनोखी लगी।
बिल्कुल, स्रोतों में एक केंद्रीय प्रश्न है कि हर कोई एक उज्जवल भविष्य चाहता है, लेकिन उस भविष्य को बनाने वाले लोग कहाँ से आएंगे?
और जवाब
दिया गया है कि वो लोग हमारे परिवारों में गढ़े जाएंगे। मतलब परिवार को एक टकसाल या एक वर्कशॉप की तरह देखा गया है।
एक टकसाल जहां चरित्र ढाला जाता है।
ठीक यही। और इसी सिलसिले में स्रोत एक युग ऋषि के दिए 5 सूत्रों का जिक्र करते हैं जो घर के माहौल को सकारात्मक बनाने के लिए हैं।
युग ऋषि मतलब एक ऐसे विचारक जिन्हें उनके अनुयायी उस युग का मार्गदर्शन करने वाला मानते हैं।
हाँ बिल्कुल, और उनके ये 5 सूत्र बहुत ही सरल हैं, लेकिन गहरे भी हैं।
तो क्या है ये 5 सूत्र?
पहला है पूजा स्थल पर प्रणाम करना। दूसरा है साथ मिलकर प्रार्थना।
ठीक है।
तीसरा है पारिवारिक सत्संग, मतलब अच्छी बातों पर चर्चा करना। और चौथा है रोजाना एक दूसरे को प्रणाम अभिनंदन करना।
अच्छा, तो ये पहले 4 सूत्र तो ये परिवार में सम्मान, संवाद और एक तरह की आध्यात्मिकता का माहौल बनाने पर केंद्रित हैं।
आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये एक नींव रखते हैं, एक आधार बनाते हैं। लेकिन स्रोत कहते हैं कि असली जादू 5वें सूत्र में है, जो इस नींव पर एक दार्शनिक इमारत खड़ी करता है।
और वो 5वां सूत्र है,
वो है बलि वैश्वदेव प्रक्रिया। और आज हमारी चर्चा इसी पर गहराई से होगी, क्योंकि स्रोत इस पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं।
बलि वैश्वदेव, ये नाम सुनने में थोड़ा भारी और पारंपरिक सा लगता है।
हाँ लगता है,
लेकिन आपने कहा कि ये दर्शन को हमारे जीवन से जोड़ता है, तो इसका संबंध किस चीज से है?
इसका संबंध हमारे सबसे बुनियादी काम से है, भोजन करना।
भोजन करना
जी, हम सब एक कहावत जानते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन।
हाँ ये तो बहुत सुना है।
स्रोत इस बात को बहुत गंभीरता से लेते हैं। उनका कहना है कि भोजन सिर्फ कैलोरी और प्रोटीन नहीं है।
तो फिर क्या है?
जो व्यक्ति भोजन बनाता है या परोसता है, उसके विचार, उसकी भावनाएं, उसके संस्कार भी उस भोजन के साथ हमारे अंदर जाते हैं।
ये तो बहुत दिलचस्प बात है। मतलब खाना पकाना सिर्फ एक केमिकल प्रोसेस नहीं है, ये एक तरह का इमोशनल और मेंटल एनर्जी ट्रांसफर भी है।
ठीक यही। और यहीं पर यज्ञ की अवधारणा आती है।
यज्ञ?
हाँ, स्रोतों में ऋग्वेद का एक श्लोक है, केवला घो भवति केवलादि।
इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब है जो अकेला खाता है वो पाप ही खाता है।
अच्छा।
इसी तरह गीता में भी कहा गया है कि जो यज्ञ से बचा हुआ अन्न खाते हैं वो सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। इन सब का सार एक ही है
कि अकेले नहीं खाना चाहिए, साझा करना चाहिए।
बिल्कुल, कि भोजन पहले परमार्थ यानी दूसरों की भलाई के लिए अर्पित होना चाहिए और फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए।
और बलि वैश्वदेव यही है?
बलि वैश्वदेव इसी दैनिक यज्ञ का सबसे सरल, सबसे सुलभ रूप है। ये खाने जैसी एक जैविक क्रिया को एक आध्यात्मिक साधना में बदल देता है।
ठीक है, तो अब मैं समझ पा रहा हूँ कि ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, लेकिन ये प्रक्रिया असल में है क्या? मतलब करते कैसे हैं इसे?
ये बहुत ही सरल है। परिवार के लिए जो भी भोजन पका है, हाँ, रोटी, चावल, दाल, सब्जी,
हाँ,
उसमें से 5 बहुत छोटे छोटे टुकड़े या हिस्से निकालकर अग्नि को समर्पित किए जाते हैं।
अग्नि को?
जी, और ये परिवार के किसी भी सदस्य के भोजन करने से पहले किया जाता है।
सिर्फ 5 छोटे निवाले आग में डालना, बस इतना ही?
हाँ, क्रिया इतनी ही सरल है, लेकिन इसका जो अर्थ है वो इसके नाम में ही छिपा है।
अच्छा।
स्रोत बताते हैं कि बलि वैश्वदेव 3 शब्दों से बना है। बलि का अर्थ है उपहार, अनुदान या त्याग।
त्याग।
वैश्व का अर्थ है विश्व के लिए या सबके लिए, और देव का अर्थ है दिव्य प्रयोजनों के लिए।
तो पूरा मतलब हुआ श्रेष्ठ उद्देश्यों के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए किया गया त्याग।
बिल्कुल।
वाह, मतलब ये छोटा सा काम अपने आप में एक बहुत बड़ा विचार समेटे हुए है कि मेरा भोजन सिर्फ मेरा नहीं, ये सबके लिए है।
और यहीं पर ये और भी गहरा हो जाता है। स्रोत कहते हैं कि ये जो 5 आहूतियां या निवाले हैं,
हाँ,
ये असल में 5 महान यज्ञों यानी पंच महायज्ञों का प्रतीक है।
एक मिनट, पंचम महायज्ञ, ये तो मतलब रसोई की एक छोटी सी क्रिया के लिए बहुत बड़ा शब्द लग रहा है।
हाँ लग तो रहा है।
स्रोत इन दोनों को कैसे जोड़ते हैं? पांच निवालों से पांच महायज्ञ कैसे हो सकते हैं?
आपका सवाल बिल्कुल सही है और यहीं पर इसका असली रहस्य खुलता है। ये एक आम गलतफहमी है कि हम सचमुच किसी अदृश्य देवता या ऋषि को भोजन करा रहे हैं। स्रोत साफ करते हैं कि ये नाम प्रतीकात्मक है।
प्रतीकात्मक?
फिर असल में क्या है? ये पांच आहूतियाँ असल में पांच महान आदर्शों या कर्तव्यों के प्रति हमारे दैनिक संकल्प हैं। ये एक तरह का रोज का दो मिनट का फिलोसॉफिकल चेक इन है।
अच्छा, तो ये एक तरह का रिमाइंडर है। तो फिर ये पांच महायज्ञ कौन कौन से हैं और उनका असल मतलब क्या है?
पहली आहूति है ब्रह्म यज्ञ, जो ब्रह्मा के लिए कही जाती है, लेकिन इसका असली मतलब है ज्ञान और विवेक का सम्मान करना।
ठीक है, ज्ञान का सम्मान।
दूसरी है देव यज्ञ। इसका मतलब किसी देवता को खुश करना नहीं, बल्कि अपने अंदर की जो दैवीय वृत्तियां हैं,
जैसे
पवित्रता, उदारता, अच्छाई, उनको जगाना और पोषित करना। ये अपने अंदर के दैवत्व को जगाने का संकल्प है।
अच्छा, तो देव यज्ञ बाहरी पूजा नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धि है।
और बाकी तीन?
तीसरा है ऋषि यज्ञ। ये उन ऋषियों और महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता है जिन्होंने समाज के लिए ज्ञान और त्याग का जीवन जिया। और इसका संकल्प है कि हम भी उनके जैसा करुणा से भरा जीवन जिएं और पिछड़ों को उठाने का प्रयास करें।
सही। चौथा है नर यज्ञ, जो पूरी मनुष्यता की सेवा का प्रतीक है। इसका भाव ये है कि हम ऐसी समाज व्यवस्था बनाने में सहयोग करें जहां हर इंसान को सम्मान और गरिमा से जीने का हक मिले।
और पांचवा?
पांचवा है भूत यज्ञ।
भूत यज्ञ?
हाँ, पर भूत का मतलब यहाँ किसी प्रेत से नहीं बल्कि समस्त प्राणियों से है।
अच्छा, सभी जीव जंतु?
बिल्कुल। ये अपनी आत्मीयता का विस्तार सिर्फ मनुष्यों तक नहीं बल्कि पशु पक्षी, पेड़ पौधे यानी प्रकृति के कण कण तक करने का संकल्प है। ये पर्यावरण, चेतना और सभी जीवों के प्रति सद्भाव का प्रतीक है।
कमाल है। तो ये जो पांच निवाले आग में डाले जाते हैं, वे असल में इन पांच महान विचारों को अपनी चेतना में, अपने मन में डालने जैसा है।
बिल्कुल। ज्ञान का सम्मान, आत्म सुधार, समाज सेवा, मानव गरिमा और सर्व जीव प्रेम, ये तो वाकई किसी कर्मकांड से कहीं ज्यादा है। ये तो जीवन जीने का एक पूरा दर्शन है जो रसोई में सिखाया जा रहा है।
आपने इसे पूरी तरह समझ लिया। यही तो भोजन को प्रसाद बनाने की प्रक्रिया है।
प्रसाद? हाँ, जब आप इन पांच संकल्पों के बाद भोजन करते हैं तो वो सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं रहता बल्कि उन आदर्शों को जीवन में उतारने की ऊर्जा का स्रोत बन जाता है।
लेकिन स्रोत इस बात पर दुख भी जताते हैं कि ये इतनी गहरी और सरल प्रक्रिया आज लगभग भुला दी गई है।
ऐसा क्यों हुआ?
स्रोत इसे आस्था संकट का परिणाम बताते हैं। एक ऐसा दौर जहां पुरानी परंपराओं को बिना सोचे समझे अंधविश्वास मानकर छोड़ देना ही प्रगतिशीलता समझ लिया गया। और इस प्रक्रिया का महत्व पहली नजर में दिखता भी नहीं है। जैसा स्रोत में लिखा है, मोटी दृष्टि से देखने में बलि वैश्वदेव का बहुत अधिक महत्व दिखाई नहीं पड़ता। इसका कोई तुरंत दिखने वाला फायदा या नुकसान नहीं है।
मतलब इसका असर धीरे धीरे और बहुत सूक्ष्म रूप से होता है, इसलिए आज की जो इंस्टेंट रिजल्ट वाली दुनिया है उसमें इसकी कदरें नहीं होती।
बिल्कुल। स्रोत इसकी तुलना एक छोटे से बीज से करते हैं जो धीरे धीरे एक विशाल पेड़ बनता है।
सही। या उस छोटी सी चिंगारी से करते हैं जो मौका मिलने पे पूरे जंगल में आग लगा सकती है। ये रोजाना अपनी आस्था, अपने आदर्शों की जड़ों में थोड़ा थोड़ा पानी देने जैसा है।
इसका असर दिखता नहीं, लेकिन ये चरित्र को अंदर से मजबूत करता जाता है।
बिल्कुल।
ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ये सच में संभव है?
हाँ।
क्या स्रोत इस पर भी कुछ कहते हैं कि लोग इसे अव्यवहारिक मानकर क्यों छोड़ सकते हैं?
हाँ, और स्रोत इसका बहुत ही व्यवहारिक जवाब देते हैं। वो तुलना करते हैं कि इस पूरे काम में दाढ़ी बनाने या बाल संवारने से भी कम समय, साधन और पैसा लगता है।
मुश्किल से दो मिनट।
मुश्किल से दो मिनट, लेकिन परिवार के मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर इसका असर कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है।
और आधुनिक रसोई का क्या, जहाँ लकड़ी का चूल्हा तो होता नहीं?
स्रोत कहते हैं कि अगर लकड़ी या कोयले का चूल्हा नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप गैस पर एक चम्मच या कोई धातु का टुकड़ा गर्म करके उस पे भी आहुतियाँ दे सकते हैं।
अच्छा।
मुख्य बात क्रिया के पीछे की भावना है, कर्मकांड की जटिलता नहीं।
तो मतलब कोई बहाना नहीं चल सकता कि हमारे पास समय नहीं है या सही साधन नहीं है?
कोई बहाना नहीं।
श्रोत इसे पुनर्जीवित करने की अपील भी करते हैं, खास तौर पर घर की महिलाओं से।
हाँ, गृहिणियों से विशेष अपील है क्योंकि पारंपरिक रूप से रसोई उनका क्षेत्र रहा है और वे इसे आसानी से अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकती हैं। लेकिन ये कर्तव्य किसी एक का नहीं, पूरे परिवार का है।
ये घर के माहौल को बदलने का एक सामूहिक प्रयास है।
बिल्कुल।
तो इन सबका क्या मतलब है? अगर हम इन सभी विचारों को एक साथ देखें तो ये घर को सिर्फ रहने की जगह से उठाकर एक पवित्र स्थान, एक मंदिर बनाने का आह्वान है। और रसोई को सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं बल्कि चरित्र गढ़ने की एक प्रयोगशाला बनाने की दृष्टि है।
आपने एकदम सही निष्कर्ष निकाला है। श्रोत एक शक्तिशाली अपील के साथ समाप्त होते हैं कि हर घर में इस यज्ञ भगवान की फिर से स्थापना होनी चाहिए।
ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं है।
नहीं, ये एक जीवंत दर्शन को घर घर में वापस लाने की पुकार है।
तो हम कह सकते हैं कि जो महान विचार हम बड़ी बड़ी किताबों में खोजते हैं, श्रोत उन्हें हमारी थाली तक ले आते हैं।
और अंत में एक विचार दिया गया है जो सोचने पर मजबूर करता है। स्रोतों में इन पांच महायज्ञों को कभी कभी गायत्री माता के पांच मुखों से जोड़ा गया है।
अच्छा।
हाँ, ये विचार कि यही पांच सिद्धांत, पवित्रता, करुणा, मानवीय गरिमा, सर्वजीव प्रेम और ज्ञान का प्रकाश, यही प्राचीन भारत के गौरव और आधार थे
और एक उज्ज्वल भविष्य बनाने के लिए आज भी उतने ही जरूरी हैं।
बिल्कुल।
तो ये विश्लेषण एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ खत्म होता है। श्रोत ये कह रहे हैं कि किसी स्वर्णिम युग या सतयुग का रास्ता बड़ी बड़ी आर्थिक नीतियों या राजनीतिक क्रांतियों से
नहीं,
बल्कि भोजन का पहला निवाला साझा करने के इस सरल, सचेत और रोजमर्रा के काम से शुरू होता है।
और ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। अगर भोजन का एक निवाला साझा करने जैसी छोटी क्रिया में इतना गहरा दर्शन और सामूहिक भविष्य को आकार देने की शक्ति हो सकती है, तो हमारे कौन से अन्य छोटे दैनिक कार्य जिन्हें हम महत्वहीन समझते हैं, ऐसी ही असाधारण शक्ति छुपाए हो सकते हैं।